आखिर वो वक्त आ ही गया जब दीवा को वापस स्पेलिंग के लिए लौटना पड़ा। वो यही चाहती थी कि आर्यांश उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए आए, लेकिन आर्यांश ने सुमन का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया था। सच तो ये था, वो अपनी आंखों के सामने दीवा को दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। जहां आर्यांश दीवा से इस वजह से गुस्सा था कि उसने इतनी अच्छी खासी जॉब करने के बजाय पेलिंग जैसी जगह पर मुश्किल काम चुना था, तो वहीं दीवा भी उसके साथ न आने की वजह से नाराज थी। उसकी बस पूरे एक घंटे लेट थी और अगर आर्यांश उसके पास होता तो उसके लिए ये वक्त बिताना मुश्किल नहीं होता। जितना दीवा आर्यांश के बारे में सोच रही थी उसे उस पर उतना ही गुस्सा आ रहा था। आखिर वो खुद को समझता क्या है? मेरी ही गलती है जो मुझे ये लगा कि वो बदल गया है। बिल्कुल नहीं, उसमें 1% भी चेंज नहीं आया है और आज भी वो उतना ही घमंडी और ज़िद्दी है। उसे क्या लगता है मैं बार बार उसे मनाती रहूँगी और वो मुझे एटीट्यूड दिखाएगा? जाने दो, अब मुझे उससे बात ही नहीं करनी और ना ही उसका चेहरा देखना है। भाड़ में जाए, जो करना है करे। दीवा गुस्से में खुद से बड़बड़ा रही थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और आर्यांश का नंबर डिलीट करना चाहा, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाई। दीवा को खुद पर चिढ़ हो रही थी। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी लेकिन वो एक पब्लिक प्लेस पर थी, आसपास अच्छी खासी भीड़ थी, तो दीवा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। बस उसकी मुट्ठियाँ कसकर बंधी हुई थीं। बस का इंतजार करते हुए दीवा ने ना जाने कितनी बार आर्यांश को कोसा। बार बार उसके मन में यही ख्याल आया कि अगर आर्यांश उसके साथ आया होता तो उसे उसके साथ एक घंटा बिताने को और मिल जाता। बस के आते ही दीवा उसके अंदर जाकर बैठ गई थी। वो आर्यांश के बारे में सोच सोचकर काफ़ी थक गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर सोने की सोची, लेकिन पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों ने उसकी इस इच्छा को भी पूरा नहीं दिया। शाम के 4 बजे के करीब दीवा पेलिंग पहुंच गई थी। वहां का मौसम काफ़ी ठंडा था, ऊपर से हल्की बारिश ने ठंड को और भी बढ़ा दिया था। वैशाली ने दीवा को बताया था कि डॉक्टर सिप्पी पेलिंग में ही रुके हुए हैं। दीवा ने आते ही हॉस्पिटल जाना सही समझा। उसने अपना लगेज घर पर रखा और 1 मिनट का भी आराम किए बिना सीधा हॉस्पिटल पहुँच गई थी। वो जानती थी कि डॉक्टर सिप्पी पहले से ही उससे नाराज़ हैं। डॉक्टर सिप्पी संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, जो उम्र में 60 के करीब थे। वो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे। उन्हें हर एक काम परफेक्शन के साथ चाहिए होता था। अगर काम उनके मुताबिक नहीं होता था तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते थे। यही वजह थी कि जब डॉक्टर सिप्पी ने प्रमोशन और पेलिंग में काम संभालने के लिए ऑफर रखा था तो कोई डॉक्टर आसानी से तैयार नहीं हुआ था। वो इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर की सैलरी भी 3 गुना करने वाले थे। हर कोई जानता था कि उनकी एक छोटी सी गलती भी डॉक्टर सिप्पी को गुस्सा दिला सकती है और न जाने फिर उन्हें उसका क्या अंजाम भुगतना पड़े। मे आई कम इन सर? दीवा ने उनके केबिन का दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा। दीवा की आवाज़ सुनते ही डॉक्टर सिप्पी का ध्यान उसकी तरफ चला गया था। उनकी भौहें सिकुड़ गई थीं। वो तंज भरे लहजे में बोले, आप परमिशन क्यों मांग रही हैं डॉक्टर गोयंका? आजकल आप सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं, तो एक केबिन के अंदर आने जैसी छोटी चीज़ के लिए परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? दीवा की नज़रें झुक गई थीं। वो धीमे कदमों से चलकर अंदर आई। उसने डॉक्टर सिप्पी के चेहरे की तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे इस तरह बिना इन्फॉर्म किए इतने लंबे टाइम तक हॉस्पिटल से दूर नहीं रहना चाहिए था। दीवा कुछ पल रुकी और फिर बिना किसी डर और झिझक के आगे बोली, लेकिन मैं कोई छुट्टियां मनाने के लिए नहीं गई थी, मैं एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी। क्या आपने इसके लिए संजीवनी हॉस्पिटल से परमिशन ली या फिर आपको उस सर्जरी को अटेंड करने के लिए बुलाया गया था? जहाँ तक मुझे पता चला है वो औरत आपकी जान पहचान की है और आप उनसे बस मिलने गई थी। सर्जरी करने में रिस्क था, फिर भी आपने अपनी मनमानी करते हुए पेशेंट की सर्जरी की। आपको एहसास भी है अगर उसकी जान चली जाती तो आपके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब होता, डॉक्टर सिप्पी दांत भींचते हुए बोले। उन्होंने सुमन और उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन गंगटोक के हॉस्पिटल से मंगवा ली थी। दीवा ने कोई गलत काम नहीं किया था, इसलिए उसे नज़रें चुराने की ज़रूरत नहीं थी। वो डॉक्टर सिप्पी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, ये सच है कि मैं उन्हें पहले से जानती थी और उनसे सिर्फ मिलने के लिए गई थी, पर उनकी कंडीशन देखने के बाद मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती थी। यही एक डॉक्टर का काम होता है। मैं आपसे मिसेज वर्मा की सर्जरी करने के लिए सॉरी बोल भी नहीं रही हूँ। मैंने यहाँ अपना काम छोड़कर जो लापरवाही दिखाई उस गलती के लिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी है। चाहे तो आप उसके लिए मुझे सज़ा दे सकते हैं और इस काम से हटा भी सकते हैं, दीवा ने जवाब में कहा। उसका जवाब सुनकर डॉक्टर सिप्पी हंसे और बोले, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें काम से हटा दूं ताकि तुम एक बार फिर अपनी जिम्मेदारियों से बच सको? हर कोई जानता है कि इस जगह को संभालना कितना मुश्किल है और ये सज़ा तुम्हारे लिए रिवॉर्ड से कम नहीं होगी। तो आप मुझे क्या सज़ा देना चाहते हैं? दीवा ने थोड़ा चिढ़कर पूछा।
यही कि यहाँ का काम तुम ही संभालोगी और मुझे किसी दूसरे पर यकीन भी नहीं है। आगे से ऐसी बेवकूफी मत करना। और किसने कहा था तुम्हें पेशेंट के कॉन्सेंट फॉर्म पर खुद साइन करने के लिए? इस बार तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूँ। पेशेंट की जान बच गई है, इसलिए इस बात को भी भूल जाता हूँ कि तुमने खुद के प्रोफेशन को दांव पर लगाया था। आगे से तुम ऐसी लापरवाही ना दिखाओ, इसलिए सजा देना भी जरूरी है। तुम्हारी सजा ये है कि पहले तुम्हारे पास 6 महीने काम करने के बाद पीछे हटने का ऑप्शन था, लेकिन अब तुम ही सब कुछ देखने वाली हो, डॉक्टर सिप्पी ने दीवा को घूरते हुए कहा। उन्होंने यहाँ आकर खुद प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी थी। जिस तरह दीवा ने इतने कम समय में इतने अच्छे से चीजों को संभाला था, वो उसे जाने भी नहीं सकते थे। अगर दीवा ने सुमन की सर्जरी करने में सब खुद संभालने की बेवकूफी ना दिखाई होती तो डॉक्टर सिप्पी उसके काम से खुश होकर जरूर उसकी तारीफ करते। दीवा ने हल्के से हाँ में सिर हिला गया था। अगर डॉक्टर सिप्पी ये सजा ना भी देते तो वो जानती थी कि 6 महीने बाद उसे ही इस हॉस्पिटल को देखना था। इतनी आसानी से हाँ कह रही हो? अगर शादी की तो अपने पति को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा, या फिर वीकेंड के अलावा उससे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, डॉक्टर सिप्पी बोले। चिंता मत कीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी, कल से मैं अपना काम संभाल लूंगी, दीवा ने थके हुए स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ गई थी। तभी पीछे से डॉक्टर सिप्पी बोले, कल से क्यों, अभी काफी टाइम बचा है। मैं काफी थक गई हूँ, बस में भी नहीं सो पाई थी, पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं आप जानते हैं ना, दीवा ने उनकी तरफ देखकर जवाब दिया। डॉक्टर सिप्पी ने हल्के से सिर हिला दिया था। वो दीवा को जाते हुए देख रहे थे। जैसे ही दीवा उनकी आंखों से ओझल हुई, वो खुद से धीरे से बड़बड़ाए, बेवकूफ लड़की, इतना कुछ हो गया फिर भी अकल नहीं आई। दीवा के साथ जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं था। डॉक्टर सिप्पी की सख्ती की वजह से सब उनसे डरते जरूर थे, लेकिन दूसरा सच ये भी था कि वो अपने यहाँ काम करने वाले हर डॉक्टर के बारे में जानते थे, उनका ख्याल रखते थे। उनकी सख्ती के पीछे छुपी परवाह हर कोई समझ नहीं पाता।
दीवा आराम करने के लिए घर पर आ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ दीवा की जाने के बाद आर्यांश को और भी सोनापन महसूस होने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे दीवा के बिना रहने की आदत लग गई थी, वो खुद को काम में उलझाए रखता था। यहाँ तो उसके पास करने के लिए काम भी नहीं था, ऊपर से 10 दिन से भी ज्यादा हो गए थे दीवा उसके साथ रह रही थी। दीवा से ध्यान भटकाने के लिए वो सुमन के साथ भी टाइम नहीं बिता सकता था। डॉक्टर ने उसे एक तय समय पर सुमन से थोड़े टाइम के लिए मिलने की परमिशन दी थी। चिढ़न के मारे आर्यांश अस्पताल के गार्डन एरिया में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। इस दौरान आर्यांश के मोबाइल की रिंग बजी, तो उसे यही लगा कि दीवा ने कॉल किया है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। आर्यांश ने अपना मोबाइल निकाला और जैसे ही उसने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। क्या लगता है किसका कॉल आया होगा जो आर्यांश के एक्सप्रेशन ही बदल गए?